की प्यार जो भी देना चाहे दे दे कर दान दुनिया के तारनहार दुनिया के तारनहार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार जो भी देना चाहे
ब्राह्मण बच्चे रोज सुबह अमृत वेला करते हैं और उसके बाद मुरली क्लास भी करते हैं जो भगवान के महावाक्य होते हैं और भगवान हम बच्चों को रोज मीठे बच्चे कहकर पढ़ाता है। तो मुरली का पहला शब्द होता है मीठे बच्चे। लेकिन आज नोटिस किया आज क्या था पहला शब्द? आज पहला शब्द था शिव भगवानुवाच, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो। क्यों? क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। तो आज शिव भगवान आज और वो शिव के लिए बहुत महिमाएं हैं भक्ति मार्ग में भी, जिसकी एक महिमा सत चित आनंद है, है ना? वो सत चित आनंद स्वरूप है कि परमात्मा निराकार है, हम जैसा देह उसको नहीं है, तो फिर क्या है उसका रूप? तो कहते हैं वो ज्योति स्वरूप है। अच्छा वो ज्योति में फिर क्या है? तो कहते वो सत चित आनंद स्वरूप है। तो जैसे हम कहते हैं कि चूंकि परमात्मा ज्योति स्वरूप है और हम आत्माएं उसकी संतान है, इसलिए हमारा भी स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप। परंतु भले दोनों का रूप समान है कि वो भी ज्योति स्वरूप, माना परमात्मा भी ज्योति स्वरूप और मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप, लेकिन फिर भी यह समानता है ना, नयों को कोर्स कराते तो समानता बताते और अंतर भी बताते। अंतर क्या है? दोनों ज्योति स्वरूप होते हुए भी अंतर क्या है? कि उसकी ज्योति सदा जागती ज्योति है और हम आत्माओं की ज्योति, हम आत्माओं की ज्योति पूनम के चांद की तरह निखरती है और फिर वहां से उसकी यात्रा आरंभ होती है अमावस की तरफ, और जब अमावस हो जाती है तो फिर वो आत्मा फिर आरंभ करती है यात्रा पूनम की तरफ। लेकिन परमात्मा सदा एक रस, वो ज्योति सदा एक रूप में चमकती रहती है, कभी उसमें उतार और चढ़ाव नहीं आता है। न सिर्फ इतना, हमारी रोशनी तो फिर भी पूनम के चांद तक पहुंचेगी, लेकिन सूर्य की रोशनी है उसकी, बहुत प्रखर है, बहुत कांतिवादी, बहुत दीप्तिवादी, बहुत आभास की हमारी भेंट में, ये अंतर। तो ऐसे ही जैसे कहा कि वही परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है वो सत चित आनंद स्वरूप भी है। अब ज्योति से तो क्लियर हो गया, ज्योति समझ में आ गई, लेकिन जब कहा कि वो सत चित आनंद स्वरूप है उसका क्या अर्थ है? तो ये तीन शब्द है। वैसे दुनिया में देखो, जैसे हम लोग ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और ये अर्थ होते हुए हमने इस शब्द को अभिवादन के लिए यूज करना आरंभ कर दिया। ग्रीटिंग के लिए यूज करते, मिलते हैं तो भी ओम शांति कहकर मिलते, क्लास आरंभ करना है तो ओम शांति करते हैं, पूरी करना है तो ओम शांति करते हैं। तो अभिवादन के शब्द के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब हम अभिवादन कर रहे, माना हम आत्म स्मृति में रहकर मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि मैं ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप, मतलब उस शांत स्वरूप में स्थित होकर हम क्या कर रहे हैं? अगली आत्मा से मिल रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि अगर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, लेकिन आज तो शांति का अनुभव करना मुश्किल हो गया है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ओम शब्द में तीन अक्षर है, अ उ और मां, अ आचरण के लिए, उ उच्चारण के लिए और म मन के विचार के लिए, जिसको सरल करें तो विचार वाणी व्यवहार। तो अगर जो विचार में है वही वाणी में है और वही व्यवहार में, अगर इन तीनों में एक रूपता होगी तभी शांति अनुभव होगी, नहीं तो मन कुछ और सोच रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, व्यवहार में कुछ और किए जा रहे हैं, तो शांति का अनुभव नहीं होगा। तो हमने इस ओम शांति शब्द को अभिवादन के लिए भी यूज कर लिया कि ताकि इस बहाने भी हम जब एक दूसरे से मिले तो शांति में स्थित होकर ही आपस में लेन देन करें। तो ऐसे ही दुनिया में भी बहुत सारे अभिवादन के शब्द हम देखते हैं, तो ये जय सच्चिदानंद करके भी अभिवादन करते हैं, है ना? तो सच्चिदानंद भी क्या है असल में? सत्य चित्त आनंद, इन तीनों का कंबाइंड स्वरूप सत चित आनंद है। अगर सिख धर्म के अंदर जाएंगे तो कहेंगे सत श्री अकाल, मिलेंगे तो कहेंगे सत श्री अकाल। कोई कृष्ण के पंथ वाले होंगे जय श्री कृष्ण, कोई राधे वाले होंगे राधे राधे। तो अभिवादन के लिए शब्द क्यों यूज किए जा रहे हैं? ताकि हमारे जीवन में हर दम अपने स्वरूप की भी और उस हमारे परमात्मा के स्वरूप की भी स्मृति बनी रहे, अर्थात वो गुण भी हमारे जीवन से झलकते रहे। इसलिए हम लोगों ने अभिवादन के लिए भी ऐसे शब्दों का यूज करना आरंभ किया। तो जय सच्चिदानंद भी एक अभिवादन के लिए हम शब्द यूज करते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या? जैसे हमने कहा ओम शांति का हमने अर्थ किया ना अभी, तो ऐसे सच्चित आनंद का अर्थ क्या है? कि सत्य माना वो सत्य है, और सत्य है माना तीन डिफरेंट शब्द है ना, एक है सत्य, एक है चित्त और एक है आनंद। एक एक का अर्थ पहले, हाँ मिलाना नहीं, पहले सत शब्द का अर्थ। हाँ, जो कभी परिवर्तन नहीं होता, सत सत्ता अस्तित्व जिसका सदा कायम रहता है तीनों कालों में। कितने लोग हैं? तीन है चार है, इसलिए वो शब्द लेंगे। माना हर समय, चाहे भूतकाल है, चाहे वर्तमान काल है, चाहे भविष्य काल है, इतनी बड़ी सृष्टि है जिसको आज हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कितने खंड है इसमें? पांच खंड। मतलब हम कहेंगे सर्वत्र हर समय और हर स्थान पर उसका अस्तित्व कायम रहता है, वो है सत। और चित्त माना जिसमें चैतन्यता है, और चैतन्यता है मतलब जिसको बाबा कई बार मुरली में कहते हैं चैतन्यता है परमात्मा में, मतलब वो ज्ञान का सागर है। जैसे वृक्ष है वो भी चेतन है ना, बढ़ रहे, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कुछ, है ना, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन बाबा कहता है मैं तो कल्प वृक्ष का बीज हूं, मुझे पूरा ज्ञान है। तो चित्त माना चैतन्यता, और चैतन्यता माना ज्ञान भी है, और आनंद माना आनंद माना उस आनंद की खोज में तो सुबह से रात तक लगे हुए हैं दुनिया। एक बहुत सुंदर अनुभूति, कि जिस अनुभूति के अंदर कोई अशांति नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन, मतलब जितनी भी नकारात्मकताएं हैं उसका लेश मात्र भी जिस अनुभूति में नहीं है, वो है आनंद, सत चित आनंद। तो वो सत चित आनंद स्वरूप है। तो फिर हम क्या है? वो ज्योति स्वरूप, हम भी ज्योति स्वरूप। वो सच्चित आनंद स्वरूप, तो हम भी है या नहीं? हम भी सच्चित आनंद है, लेकिन ज्योति स्वरूप में समानता होते हुए भी अंतर भी देखा, और हमारे अभी सच्चित आनंद स्वरूप में भी समानता होते हुए भी अंतर को देखेंगे। सत चित आनंद, इन तीन शब्दों को हमने एक एक करके समझा, और इसको अभी और समझते हैं। सत चित आनंद एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, जिसके चित्त में सत्य विराजमान रहेगा वो ही आनंद की अनुभूति करेगा, आनंद प्रदान, जो खुद अनुभव करेगा तो फिर प्रदान भी करेगा। तो सत चित आनंद एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि जिसके चित्त में सत्य विराजमान है उसी को ही आनंद की अनुभूति होगी। अब परमात्मा चूंकि उसके चित्त में सदा ही सत्य है और इसलिए वो सदा ही आनंद देता है, लेकिन हम आत्मा है। सेम फार्मूला, सत चित आनंद। हमारे चित्त में कभी सत्य है कभी असत्य है, और सत्य है माना कभी सोल कॉन्शियसनेस है और कभी बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, आनंद के अधिकारी हैं हम, आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। लेकिन अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में है, आनंद के अधिकारी है ही नहीं तो होंगी कहां से? हम अधिकारी ही नहीं रह जाते हैं आनंद के, क्योंकि आनंद तभी मिलता है जब चित्त में सत्य होता है। और हम चित्त में असत्य को लेकर, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस को लेकर, और फिर उस बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरी राक्षसी प्रवृत्ति का जो जन्म होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आदि जो भी, उनके साथ जी रहे हैं और खोज रहे हैं आनंद, पर मिला नहीं मिला, यही बताते हैं ना जिज्ञासुओं को भी, नहीं मिल सकता है जब तक आप सोल कॉन्शियस नहीं बनते हैं। तो आनंद की अनुभूति अगर हम करना चाहते हैं तो चित्त में सत्य को ही स्थान देना पड़ेगा, और चित्त में सदा सत्य का स्थान बना रहे उसके लिए ही बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। देखो आपका बच्चा है, सपोज मैं हूं, छोटी हूं अभी, समझो माँ बाप के घर में, अगर मैं स्कूल जा रही हूं और मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हूं, तो मेरे मम्मी पापा सोचते हैं कि भले और शब्दों में ये कमजोर है तो हमको फर्क नहीं पड़ता, पर मैथमेटिक्स में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको आगे इसको अपने कारोबार में लेना है तो इसको हिसाब लेन देन तो अच्छी से आना चाहिए ना, तो इसको हमें क्या करना है, मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनाना है। तो क्या करेंगे, बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है और हम चाहते हैं हमारा बच्चा उस मैथमेटिक्स में कमजोर न रहे, स्ट्रांग बने, मजबूत रहे, होशियार रहे, तो क्या करेंगे माँ बाप, ट्यूशन लगाएंगे। स्कूल में तो वैसे ही जा रहे हैं हम, वहां तो पढ़ ही रहे पर फिर भी कमजोर है, लेकिन फिर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ट्यूशन। और ट्यूशन लगाना मतलब क्या, ट्यूशन लगाना मतलब जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसी सब्जेक्ट वाले टीचर से लगाएंगे ना। अगर मैं मैथमेटिक्स में कमजोर हूं और मेरे पापा हिस्ट्री वाले के साथ कनेक्ट कर दे मेरे को, बन सकेंगे हम मैथमेटिक्स में नहीं। तो ट्यूशन का मतलब इतना ही होता है, जिस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं उसी सब्जेक्ट में जो माहिर है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। तो बार बार उससे कनेक्ट होने से उसी फील्ड की बातें वैरायटी रीति से बार बार मिलेगी। एक ही चीज होती है, जैसे बाबा का एक ही हमको कहता है बच्चे सोल कॉन्शियस बनो, लेकिन सोल कॉन्शियस बनने के लिए, सोल कॉन्शियस बनकर परमात्मा को याद करने के लिए रोज वैरायटी पॉइंट्स आ रहे हैं, ताकि यही एक बात अच्छी से समझ में आए। वही तो एक बात है ना, अंतिम पुरुषार्थ तो यही है ना हमारा, लेकिन इसी एक बात को बाबा रोज वैरायटी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इसी एक बात को वो अच्छी से समझ सके, वो बात हमारी अपनी बन जाए। रट्टू तोता वाली नहीं, लेकिन पूरी समझ के साथ हमारे अंदर वो बैठे। नहीं तो रट्टू तोता वाली होगी तो पहाड़े याद कर लिए, आठी आठी छप्पन, लेकिन कुछ और बोल दिया तो गलत बोल देंगे, क्योंकि वो तो रटा हुआ था आठ आठ छप्पन होता है, और कुछ हिसाब करने आया तो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ रट्टा मारा था। तो रट्टा नहीं लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी, ये होता है ट्यूशन का मतलब। अब चूंकि बाबा ने हमें ज्ञान दे दिया है कि बच्चे तुम देह नहीं तुम आत्मा हो, बात समझ में आ गई है, ऐसे नहीं कि नहीं समझ में आ गई, लेकिन अब दिक्कत कहां जा रही है, वो सोल कॉन्शियस में स्टेबलाइज होना, स्थित होना, उसमें कमजोर रह गए हैं हम। समझ में आ रही है बात? पहले तो ये भी नहीं पता था कि हम बॉडी कॉन्शियस में जी रहे हैं, लेकिन जैसे ज्ञान मिला तो हमें पता चला कि हम तो बॉडी से अलग आत्मा है, और इसलिए हमें बॉडी कॉन्शियस एक असत स्टेज है, हमें सत्य के साथ जीना है, हमारा जो सत्य स्वरूप है उसके साथ जीना है, अभी सोल कॉन्शियस स्टेज होकर जीना है। मन में गांठ भी बांध ली कि हाँ अभी तो हमें ऐसे ही जीना है, परंतु हम देखते हम फिसल जाते फिसल जाते, तो हमको भी ट्यूशन लगानी पड़ेगी ना। जैसे कहा बच्चे को देखा, बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है, तो किसके साथ ट्यूशन कर दी? मैथमेटिक्स के टीचर के साथ। अब हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम किस में कमजोर है कि हमारे चित्त में सत्य सदा नहीं बसता है, असत्य का वार हो जाता है, इसलिए किसके साथ ट्यूशन करनी पड़ेगी? जिसके चित्त में सदा सत्य रहता है। यही कारण है बाबा बार बार कहता है बच्चे मुझे याद करो, लेकिन बच्चे नटखट है ना, कभी कभी बोल बैठते हैं, बाबा आप भी तो स्वार्थी हो, बस बोलते हो मुझे याद करो मुझे याद करो, हमें और कोई काम नहीं पड़े क्या? क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है ना कि बच्चे नाच नखरे भी करना है तो मेरे से ही करो और किसी से नहीं, तो हम नाच नखरे भी कर लेते हैं। परंतु क्यों वो कह रहा है कि मुझे याद करो? क्योंकि ये ट्यूशन है, जब तक हम कमजोर है और ट्यूशन नहीं लगाएंगे तो उस विषय में हम कमजोर ही रह जाएंगे, और फिर इधर प्रार्थना करते रहेंगे मुझे आनंद चाहिए मुझे खुशी चाहिए, हे प्रभु मुझे खुशी की अनुभूति कराओ, हे प्रभु मुझे आनंद की अनुभूति कराओ। फार्मूला को यूज नहीं करेंगे और सिर्फ बोलते रहेंगे तो थोड़ी होगा, हाँ ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो ही तो वाटर बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं बोले वाटर बनाओ होगा कैसे, वो नहीं हो सकता है ना। तो ये फार्मूला है कि चित्त में सत्य को स्थान दो तो आनंद आएगा, हम समझ गए लेकिन कमजोर है, इसलिए हमको किसके साथ ट्यूशन करनी पड़ेगी? उसके साथ जो उसमें माहिर है, उसके चित्त में सदा ही सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वो शरीर धारण नहीं करता है, हम तो शरीर धारण करते हैं, और इसीलिए हम काल चक्र में आते हैं, तो इसीलिए हमारे ऊपर क्या चढ़ती है? असत्य की मैल चढ़ती है। तो कभी वो मैल ऊपर आ जाती है तो फिर आनंद की अनुभूति कैसे होगी? नहीं होगी। तो अब जो मैल चढ़ गई तो एक कहा उसने कि मुझे याद करो, और दूसरा क्या कहा? मुझे प्यार करो। शिलबन बोल रहे थे ना, एक है कि मुझे प्रेम से याद करो और एक है प्यार करो। तो आज बाबा ने क्या कहा? मुझे याद करो और मुझे प्यार करो। क्यों? क्योंकि मैं ही सदा सुखी बनाने आया हूं। प्यार करने का मतलब क्या? याद करने का मतलब समझ में आ गया? प्यार करने का मतलब क्या? गीत सुना, गीत सुना, क्या था गीत? हाँ गीत का मतलब क्या थे गीत के बोल? तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो जब भगवान कहता है मुझे प्यार करो, उसका मतलब है एक तो मुझे याद कर रहे हो, दूसरा जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां आए उसको सहज स्वीकार करो। तभी तो कहा ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तो कांटों से भी प्यार का मतलब क्या, मैंने उसको सहज स्वीकार किया। और जब सहज स्वीकार करेंगे तो क्या, क्यों, कैसे वाली जो प्रश्नों की क्यों खड़ी होती है, वो क्यों खड़ी ही नहीं होगी। और जब ये क्यों खड़ी ही नहीं होगी, मतलब अंदर चित्त में जो मैल बैठी हुई है वो उथलेगी नहीं। समझ में आ रहा है ना, मैल तो चढ़ गई है ना पहले, लेकिन ये क्या क्यों से क्या होता है, जो जमी हुई मैल है वो उथलती है, और उथलने के कारण फिर कनेक्ट होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना फिर। इसीलिए जो भी जीवन में आ रहा है उसको हम स्वीकार करें। इसको कहते हैं प्यार करना, इसको कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अर्थात प्यार करना मतलब टोटली सरेंडर करना अपने आप को, अपना सर अंडर उसके, और सर ही जब अंडर में कर दिया तो ये सर ही तो क्या क्यों उठाता है, ये बुद्धि ही तो क्या क्यों के प्रश्न उठाती है ना, क्यों, कैसे, ऐसा क्यों मेरे साथ, मैंने क्या किया था, मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों। लेकिन वो ही अंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, अब कुछ नहीं उठ रहा है तो चित्त में भले न महल जमी पड़ी है 63 जन्मों की, पर उथल नहीं खाएगी ना। आप देखो आज की डेट में भी एक बच्चा जन्म लेता है, पूर्व जन्मों से आ रहा है ना, तो बॉडी कॉन्शियस था ना पूर्व जन्मों में, क्योंकि ये तो बाबा का ज्ञान मिला तब हमें पता चला कि हमें सोल कॉन्शियस में रहना। पता होने के बाद भी कोई हम कंटिन्यूअसली थोड़ी रह रहे हैं। तो जो आत्मा भी पूर्व जन्मों में जिसको ये ज्ञान भी नहीं था और आज जन्म ले रही है, फिर भी वो क्या बिखेर रही है। एक छोटा बच्चा किसी भी जाति वाले, किसी भी घर वाले में, दरिद्र है, अमीर है, कैसे भी घर में, बस एक छोटा बच्चा है, सिर्फ वो काला है, गोरा है, दैट डजंट मैटर, पर वो क्या बिखेरता है, वो आनंद, वो प्रेम, वो खुशी बिखेरता है। जबकि मैल तो चढ़ी हुई है ना आत्मा के पर, लेकिन उथली नहीं है अभी, उथली नहीं है अभी वो, और इसलिए वो आज भी जन्म ले रहा है तो वो वाइब्रेट कर रहा है, शुद्ध वाइब्रेशन वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर अक्वायर करते जाता है, अंदर उथल पुथल होती रहती है, उसके रेडिएशन बंद हो जाते हैं, बंद हो जाता है, नहीं होता है। पहले कितना प्यारा लगता है, कितनी कशिश होती है, बाद में होती है इतनी, क्योंकि अभी उसने रेडिएट करना ही तो बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि अक्वायर जो किया है उसके आधार से अभी बहुत कुछ उसमें आ गया है। जैसे ही कोई एक पोजीशन मिलती है तो क्या होता है, पहले सबसे प्यार से बात कर रहे थे, मिलजुल के चल रहे थे, बच्चे को टीचर ने घोषित कर दिया तुम मॉनिटर हो, नशा चढ़ा, ईगो आ गया, मैं क्यों बात करूंगा, वो लोग खुद आके बात करेंगे मेरे से। जबकि पहले जब पोजीशन नहीं थी, माँ बाप ने सिखाया था और वो मेरा गुण भी था, सबके साथ प्यार से बात कर रहे थे, मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही अक्वायर किया, मैं क्यों, मैंने खुद अपने रास्ते बंद किए ना, मैल को उथलाया और रास्ते बंद। वो एक छोटी सी कहानी आती है ना कि दोपहर का समय था, वन में वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध विश्राम कर रहे थे, प्यास लगी, अपने शिष्य आनंद को कहा पास में ही पहाड़ी में जो झरना है वहां से पानी लेकर आओ। तो शिष्य गया तो वहां से झरने के पास से कुछ बैलगाड़ियां गुजरी थी, तो जिस कारण से धूल उस झरने के पानी में मिल गई थी, कुछ सूखे पत्ते वगैरह भी उसमें थे। तो सोचा कैसे लेके जाऊं इस पानी को, गंदा पानी। तो वापस लौट के आया और कहा कि महात्मन, पानी साफ नहीं था, मैला था, इसलिए मैं वापस आ गया हूं। तो मैं नदी के पास जाता हूं, जानता हूं नदी दूर है, परंतु कम से कम वहां स्वच्छ पानी मिलेगा। महात्मा जी ने कहा नहीं, वापस वहीं जाओ, पानी लेके आओ उसी झरने से। फिर गया तो पानी अभी भी स्वच्छ नहीं है। फिर आया, महात्मन पानी स्वच्छ नहीं है। फिर तीसरी बार का नहीं, वहीं जाओ, वहीं से पानी लेके आओ। और अब की बार जब गया, पानी बिल्कुल साफ था। क्यों? वो जो धूल उसमें उथल पुथल हुई थी, उसको थोड़ा समय मिला, उस समय में वो क्या हुई, नीचे बैठ गई पानी। और ये संदेश दिया महात्मा बुद्ध ने, हमारे अंदर भी उथल पुथल चलती रहती है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा धीरज, थोड़ी सी शांति। और ये धीरज और शांति किस बल से आएगी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, अर्थात समर्पण, और अर्थात उसके साथ प्रेम की भावना, उसके साथ प्यार की भावना, उसके साथ भक्ति भाव। इसीलिए हम कहते हैं ना, हमारा योग सिर्फ बुद्धि योग नहीं है, भक्ति योग भी है। विवेक और प्रेम दोनों साथ साथ होना। अकेले विवेक से बात बिगड़ जाएगी, अभिमान खूब आ सकता है। अकेले प्रेम से भी बात बिगड़ जाएगी, अंधश्रद्धा में बदल जाती है वो। लेकिन विवेक और प्रेम दोनों साथ साथ चले, तो ज्ञान भी मिला हमको और फिर उसके साथ वो प्यारा सा रिश्ता। कल सुना ना, मामेकम शरणम व्रज, कि देह सहित सब कुछ सरेंडर। कितने प्रश्न करता है अर्जुन, कितने प्रश्न करता है, और कृष्ण उसको कन्विंस कर रहे। हर बार उसका नया प्रश्न उठता है और हर बार श्री कृष्ण उसको कन्विंस कर रहे हैं, और ऐसे ही उसके गीता के चैप्टर्स बनते रहे। और आखिरी चैप्टर में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, चित्त के ऊपर जो मैली परतें थी वो बैठ गई अभी सब, सत्य स्मृति अभी उभर कर आ गई है, सत्य मुझे अभी समझ में आ गया। पहले तो उसको उस पर भी डाउट हो रहा था, ये कौन भगवान है क्या, क्योंकि उसको तो सखा लग रहा है ना, उसको तो उसके बुआ का बेटा है वो तो, है जिस प्रकार से दर्शाए। लेकिन उसी गीता में बताते हैं कि वही अर्जुन कहता है कि बस करो मैं ऐसा रूप, तो असली रूप भी तो दिखाया ना, कि तू जो कृष्ण समझता है वो कृष्ण नहीं हूं मैं तो निराकार ज्योति स्वरूप हूं। ये तो देह है वो तो, तभी हम बताते हैं ना कि तीन बायोग्राफीज मिक्स हो गई है। ब्रह्मा के तन में आते तो लोगों को तन दिख रहा है, और फिर वही ब्रह्मा कृष्ण बनता है तो लोगों को लग रहा है कृष्ण में भगवान आया, समझ में आ रही ना। परंतु वो तो क्या है, निराकार है। तो जब इतना पूरा कन्विंस करता है कृष्ण बार बार वैरायटी तरीके से, तब वो स्वीकार करता है कि नष्टो मोहा, मतलब वो असत्य ज्ञान जो था हमारे पास, अज्ञानता जो थी, उसके प्रति जो मोह था वो अब नष्ट हो गया, और आपने जो सत्य ज्ञान दिया है उसकी स्मृति मुझे अभी जागृत हुई है, और इसलिए अब आप जो कहोगे बिना क्या क्यों के। अभी तक तो मैं क्या क्यों कर रहा था, पूरी गीता तो उसके क्या क्यों के आंसर ही है ना, लेकिन अब मैं क्या क्यों कैसे कुछ नहीं करूंगा, आप जो बोलेंगे मैं वो ही करूंगा। इतना समर्पण, इसको कहते हैं प्यार करना। और जब इतना समर्पण करेंगे तो हम कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने में तो डिफिकल्टी आ रही ना, एक तो देखो मेरा खुद का, जैसे वो सच्चिदानंद स्वरूप है वैसे मैं भी सच्चिदानंद हूं, तो मैं अगर सिर्फ अपने ही चित्त को, जो चित्त में मैल उठ रही है, बार बार ऊपर आ रहे, दुर्भाव आ रहे, अभिमान उठ रहा है, अहंकार, यही तो होता है अंदर में, और क्या हो रहा होता है, ये शांत हो जाए। और शांत हो जाए मना उठ रहे हैं, अंदर में लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बस समय दो उसको, मार्जिन दो, बैठेंगे वो नीचे। हम जल पानी पिला देंगे तो फिर क्या होता है, ज्यादा देर बैठेंगे। बाबा कहते ना आएंगे वेस्ट थॉट्स आएंगे, परंतु उनकी मेहमान निवाजी मत करो। और जैसे ही मेहमान निवाजी आप बंद करो, आपके पास कोई आए तो आना क्या करता है वो, उसको एहसास हो जाता है अपनी वैल्यू आ नहीं, फिर नहीं आते हैं। तो ऐसे ये भी इतना सिर क्यों उठाते हैं, हमारी अंदर की जो नकारात्मकताएं हैं, अभिमान अहम ही क्यों ज्यादा सिर उठाते हैं, हम उसको जल और पानी देते रहते हैं। नहीं दे, और नहीं दे मना शांत, साक्षी बनकर। अच्छा ये भी है, ओके ओके ओके, सारी वो जो उठ रही थी ना धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, और जब शांत हो जाएगी तो मैं आत्मा शांत स्वरूप सत्य स्वरूप अधिकारी हूं आनंद की, आनंद तो अनुभव होगा। और मैं अब उस फ्रीक्वेंसी पे आ गई जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो कनेक्ट होना तो मिनटों का क्या सेकंडों का। हम क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही ना हमारी, यही तो कारण है और कुछ नहीं है कारण, कि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही तो हम कनेक्ट नहीं हो रहे। और जब कनेक्ट नहीं हो रहे तो जो सदा सदा आनंद का स्रोत है, हम तो फिर भी बताया ना, हम पूनम के चांद अमावस तक चले जाते हैं, हम नदी भरी हुई तो कभी खाली हो जाते हैं, लेकिन वो तो सागर है, सदा भरा रहता है, तो वो स्रोत है। तो और उसके साथ जब मैं कनेक्ट हो जाऊंगी तो मैं एम्पावर हो जाऊंगी ना, और एम्पावर हो जाऊंगी मना मेरे ट्यूशन काम कर रही है ना, ट्यूशन जाते जाते बच्चा एक्सपर्ट होगा या नहीं होगा, कि वैसा ही रहेगा जिस दिन पहले भेजा था, इसलिए भेजे थे क्या बच्चे को ट्यूशन कि साल भर जाके आओ और वैसे के वैसे वापस आ जाओ, नहीं, साल भर की ट्यूशन के बाद अब वो मैथमेटिक्स में क्या हो गया है, होशियार हो गया। अभी तो बाप की भी गलती निकलता, पापा ऐसे नहीं होता है, नहीं होता है। तो यही सच्चित आनंद को शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे मुझे याद करो और प्यार करो तो मैं तुम्हें सदा के लिए सुखी बनाऊंगा। और सदा के लिए का अर्थ है पूरे कल्प के लिए, सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, आने वाले नया जो चक्र आरंभ होगा उसमें तो गारंटी दे दी बाबा ने 21 जन्म सदाकाल बाबा उसको कहते हैं। फिर बाद में शुरू होगा हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस द्वापर से, लेकिन पूरे 21 जन्म, और उस 21 जन्म में एक जन्म संगम का, क्योंकि वहां की गिनती अगर करो तो 12 और 8 तो 20 ही होते हैं ना, ज्यादा तो होते ही नहीं है, तो फिर एक कहां गया, कहां का काउंट करें, यहीं का। तो यहां भी उस आनंद की हम अनुभूति करें, और जब हम आनंद की अनुभूति करेंगे, और आनंद की अनुभूति मतलब क्या, आत्मा क्या है, एक ऊर्जा है, यही कहते हैं ना, और ऊर्जा का स्वभाव होता है वाइब्रेट होना। ऊर्जा का स्वभाव होता है वाइब्रेट होना, और ये वाइब्रेट होने के पैटर्न वैरायटी हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते हैं, क्या एक ही पैटर्न में वाइब्रेट होगी? नहीं, ये डिफरेंट पैटर्न्स में जो ऊर्जा वाइब्रेट होती है वो हर एक पैटर्न की अनुभूति अलग होती है, और उसी अनुभूति को नाम दे दिया, और उसी के आधार से हम कह रहे हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। अर्थात ऊर्जा का वो एक वाइब्रेटिंग पैटर्न कि जब इस रीति से वाइब्रेट होगी तो जो फीलिंग आएगी उस फीलिंग को एक नाम दे दिया। जैसे गीत बजते हैं ना हमारे पास, तो आप देखो कभी कोई गीत बजता है तो एकदम शांति का एहसास होता है, और कभी कोई गीत बजता है तो पैर थिरकने आरंभ होते हैं। है तो गीत ही, म्यूजिक ही, और वो गीत और म्यूजिक भी क्या है, वाइब्रेशन है, और तो कुछ नहीं है। ऐसे ही जब रिकॉर्डिंग करते तो क्या हो रहा होता है, बोल भी रहे हैं तो क्या हो रहा है एक्चुअली, या सितार बजाओ हारमोनियम बजाओ क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो हर एक पैटर्न जो है वाइब्रेशन का एक फीलिंग देता है, और उस फीलिंग को हमने नाम दे दिया। तभी जैसे कहा कि कोई गीत सुना उसको नाम दिया, उससे एहसास हुआ शांति का, तो भविष्य में हम उस शांति को फिर से कभी अनुभव करना उसको रेफर करेंगे तो नाम दे दो शांति। कोई गीत सुना पैर थिरकने लगे तो कोई ऐसा फंक्शन होगा उत्सव होगा खुशी वाला, तो उसमें हम इसको रेफर करेंगे बजाएंगे इसको नाम लिख दो खुशी। यही करते और क्या करते हैं। तो ऐसे ही आत्मा के अंदर भी आत्मा जो वैरायटी तरीके से वाइब्रेट हो सकती ओरिजिनली, हम क्योंकि क्या कहते हैं उसके मूल संस्कार ये कहते हैं ना, हम उसके अनादि गुण ये कहते हैं ना हम, ओरिजिनली आत्मा वो सात पैटर्न में वाइब्रेट होती है, जिस सात पैटर्न को हमने सात गुण बोल दिया कि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है। आप देखो कभी कोई गीत ऐसा होता है बुलंद, सुन के मेरे तो हौसले ही बुलंद हो गए, पर था क्या, वो वाइब्रेशन ही तो था और तो कुछ नहीं था ना। तो वाइब्रेटिंग पैटर्न ही अनुभूति कराता है, और आपने इससे पहले यही क्लास सुनी ना वाइब्रेशन की ही क्लास सुनी ना। तो अगर मैं सचित आनंद की स्थिति में हूं, मतलब आत्मा की एनर्जी उस रीति से वाइब्रेट हो रही है, तो वो मैं खुद भी अनुभव कर रही हूं, और फिर वाइब्रेशन तो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो जितनी दूर तक ट्रैवल करेंगे उतनी दूर तक में जो जो उस घेरे में आएगा उसको भी आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। तो कल हमने क्लास किया ना स्वपरिवर्तक सो, तो अगर हम परिवर्तन हो जाएंगे तो हो जाएगा ना विश्व परिवर्तन, नहीं होगा वही है। हाँ, तो विश्व परिवर्तक कैसे, वाइब्रेशन से पूरा खेल होगा। तो पहले हम तो अनुभव करें, हम तो उस आत्मा को उस वाइब्रेटिंग पैटर्न में वाइब्रेट होने के लिए मार्जिन दे, हम मार्जिन ही नहीं दे रहे। हम क्या, क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे जीवन में ये क्यों है। तो जिन्होंने ये किया वो इस कोरोना काल में डिप्रेशन में चले गए। हम ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया तो मजे से जी रहे, कोरोना आए चाहे कोरोना का बाप आए, है या नहीं। हमने स्वीकार कर लिया, ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी, सचमुच कल्याणकारी है, नहीं तो आप बाबा की सीजन में यहां बैठे होते पांडव भवन में। सपने होते थे कब हमको पांडव भवन में एक रात दो रात रहने का चांस मिलेगा, कब हम चार धाम करेंगे, क्योंकि नीचे की जो भीड़ आती थी यहाँ पे जो लाइन लगती थी एक झलक पाने के लिए तरसते थे, नहीं कि बाबा के कमरे में भी जाना है तो लंबी लाइन है, झोपड़ी में भी जाना है तो लंबी लाइन, और लंबी लाइन सिर्फ लंबी लाइन नहीं है, जाने के बाद फटाफट निकलो कि भाई चलो लंबी लाइन में इतने इंतजार किया, तपस्या किया तो अंदर तो कम से कम कुछ देर बैठो, नहीं जाओ और निकल के आओ। और अभी तो पूरे ही 4-5 दिन जो भी भट्टी के हैं चारों धाम आपके लिए खुले हैं, जब जी में आए तब चले जाओ, यहाँ का वाइब्रेशन अनुभव करो, अपने में भरो, अपने आप को चार्ज करो। तो हर सीन में क्या है, कल्याण है। तो ब्राह्मणों को बाबा ने बच्चों को सिखा दिया है, स्वीकार करते चले जाओ, मैं हूं ना, बाबा कहते हैं चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। तो एक बच्चा भी चाहे कुछ भी बात आ जाए, पापा बैठे देख लेंगे। तो जब वो इतनी गारंटी दे रहा है मैं हूं ना, तो क्या करना चाहिए, सचमुच उसको प्यार करना चाहिए, उस पर समर्पित हो जाना चाहिए, चाहे जीवन में जो बात आ जाए। क्योंकि इतना तो ज्ञान दे दिया ना बाबा ने कि कर्मों का खाता सेटल करना ही पड़ेगा, तो बनाए थे अनजाने में, बन गए थे। सिर्फ अनजाने में नहीं, जाने भी बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि अभिमान छोड़ता नहीं है ना, अहंकार छोड़ता नहीं है ना। तो जानते हुए भी, जैसे दुर्योधन ने किया था, क्या उसको नहीं पता था मैं गलत कर रहा हूं, पता था सब कुछ, मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं गलत है, पर मैं अपने आप को गलत करने से रोक नहीं पाता हूं। तो और कौन है ये पात्र, सब हमारे अंदर की वृत्तियां ही तो है ये सब। तो जाने अनजाने हमने जो किए हैं वो तो सामने आएगा ही। ओके, हो गया है, स्वीकार करते चलो, लड़ो नहीं। तो वो जो उथल खाता है ना मिट्टी, वो उथल खाना बंद हो जाएगा, अर्थात वो परतें जो जमी है वो अपने आप हट जाएगी। कहते हैं एक राजा था, भौतिक सुख सुविधाओं से बहुत संपन्न था, बहुत संपन्न, और उसके राज्य में भी सब था, लेकिन मन से प्रसन्न नहीं था, मन बहुत खिन्न रहता था। तो एक बार मंत्रियों की जब दरबार होती है, उसके सामने उसने बात रखी कि मैं मन से प्रसन्न नहीं हूं, मैं मानसिक रीति से बीमार हूं, कुछ उपाय करो। तो मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श किया और राजगुरु के सामने बात रखी। राजगुरु ने मुस्कुराकर कहा, इतनी सी बात है, इसका तो बहुत छोटा सा उपाय है। क्या छोटा सा उपाय है, कहा वो व्यक्ति जो सुखी रहता है उसकी कमीज लेकर एक दिन वो पहनकर रात में सो जाओ, आपको वाइब्रेशन मिल जाएंगे, आप सुखी हो जाओगे। तो क्या हुआ कि सरल उपाय है, चलो गांव राज्य में जाते हैं और जो व्यक्ति सुखी है उसकी कमीज लेकर आते हैं, राजा उसको पहन लेगा रात भर में, उसको वाइब्रेशन मिल जाएंगे और वो भी मन से प्रसन्न हो जाएगा। सिपाही गए, महीनों बीत गए, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं मिला ऐसा, लेकिन वो वापस नहीं जा रहे क्योंकि वापस जाएंगे तो दंड मिलेगा। तुम खाली हाथ एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, कमीज नहीं लेकर आए तुम, तो वापस नहीं गए। थक कर हार कर एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, सोच रहे क्या करें क्या नहीं करें, जा तो सकते नहीं, जाएंगे तो मौत तो वैसी होनी है, दंड मिलना है, उससे अच्छा यहीं बैठे रहे। वहीं पर बाजू में भी दूसरी तरफ और एक पेड़ था, और उस पेड़ के नीचे एक गाड़ीवान अपनी बैलगाड़ी साइड में रखकर विश्राम कर रहा था, और अचानक से वो बोल बैठा, हे ईश्वर, जैसा सुख तूने मुझे दिया है ऐसा सुख सबको मिले। और ये आवाज उन सिपाहियों के कानों में पड़ी, आशा की लहर, आशा की किरण, अरे कोई तो सुखी है, अभी तो हम इसकी कमीज लेके जाएंगे। गए उसके पास, कहा कि आप बहुत सुखी हैं, हमने आपके मुख से आवाज सुनी, आप बहुत सुखी हैं। तो गाड़ीवान कहता है, दिखता नहीं है कि आपको मैं सुखी हूं। तो बोलता है, सचमुच में आप बहुत सुखी हैं? तो कहता है, देखो मेरे बैल खाना खा के सुस्ता रहे हैं और मैं भी खा के विश्राम कर रहा हूं, तो मैं सुखी नहीं दिखता हूं तुमको। तो बोलते, लेकिन फिर आपके पास कमीज तो नहीं है। क्योंकि उनको क्या चाहिए था। तो कहते, लेकिन आपके पास कमीज तो नहीं है। तो कहता है, कमीज से सुख थोड़े होता है, सुख तो आत्मा में अपने भीतर होता है। तो फिर कहते, अच्छा ऐसी बात है, तो हम आप हमारे साथ हमारे राजा के पास चलिए। तो मैं क्यों जाऊंगा राजा के पास, मैं नहीं जाऊंगा। वो चले गए ऐसे और बताया उनको। तो कहा, राजा ने कहा कि उसको लेके आओ, कहा नहीं वो तैयार नहीं है। तो फिर उसने, वो तो सिपाही भेजे थे ना, तो पहले मंत्रियों को भेजा, फिर भी नहीं आया। फिर राजा खुद, उसने क्योंकि कहा, क्योंकि हर बार तो उसने बोला राजा को जरूरत है मेरी, मेरे को नहीं है, इसलिए वो है, मैं क्यों जाऊंगा। तो फिर आखिरकार वो रथ पे सवार होकर अपने मंत्रियों के साथ सिपाहियों के साथ आया, और सिपाहियों ने मैसेज भेजा कि राजा आ गए हैं, मिलो। मैं क्यों मिलूंगा, वो आए ना मेरे पास। तो रथ पे सवार था, तो पहले रथ से उतरा, मंत्रियों के साथ गया, तब भी बोला मैं क्यों मिलूंगा, क्योंकि मिलने नहीं गया, वो सिर्फ रथ से उतरा है। फिर वो मंत्रियों को भी छोड़ा, फिर उसने पहले रथ को छोड़ा, फिर मंत्रियों को छोड़ा, फिर अकेला चल पड़ा। फिर उससे बोला, बोला क्या मेरी पीठ खुजा सकते हो? बोला हाँ खुजा सकता हूं, और खुजाने लग गया। तब उस गाड़ीवान ने कहा, इतना दिखावा पहले क्यों किया, तो अभी मुझे पता चल गया आप में नम्रता है, इसलिए मत करो मेरी पीठ की खुजलाई। क्योंकि वो तो सिर्फ क्या करना चाह रहा था, अहंकार है क्या इसमें, क्योंकि वो टूटे बिना आनंद कहां से आएगा, सुख कहां से आने वाला है। और तब उसको पूछा, उसको गाड़ीवान, कहो आपका जो प्रश्न है कहो। ये कौन सा रहस्य है, जिसके पास सहस्त्रों कमीजे हैं वो सुखी नहीं, और जिसके पास एक भी कमीज नहीं है वो सुखी है? तब उसने कहा कि सुख कमीज से नहीं होता है, हाँ आनंद कमीज से नहीं है, आत्मा तो स्वयं ही आनंद स्वरूप। तो ये कमीज कौन सी है, ये चित्त के ऊपर ये अज्ञानतावश काम क्रोध लोभ मोह जो हमने किया है, उसकी महलों की परतें चढ़ती गई है। तो राजा मतलब वो व्यक्ति जिसके चित्त के ऊपर महलों की परत 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 तबका, जिसके पास सैकड़ों कमीजे हैं वो सुखी नहीं, और जिसके पास एक भी कमीज नहीं है, मतलब जिसके पास मैल की एक भी परत नहीं है, वो सुखी है। कैसे, थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूं और उसके साथ पूरा करते हैं। बल्ब देखा है आपने, बल्ब, बल्ब में एक फिलामेंट होता है और चारों तरफ कांच होता है, कांच होता है वो पारदर्शी होता है। जब हम स्विच ऑन करेंगे क्या जलता है, रोशनी कौन देता है, वो कांच देता है या फिलामेंट देता है? फिलामेंट देता है। लेकिन वो फिलामेंट में जो रोशनी है, वो रोशनी एक जगह खड़ी नहीं रहती, वो प्रसारित होती है, वो फैलती है। और चूंकि कांच वो प्रसारित हो रही है, उसके मार्ग में कौन आ रहा है, कांच आ रहा है, लेकिन पारदर्शी कांच है तो वो बाहर निकल के आ रहा है। लेकिन अगर इसी कांच के ऊपर मैल की परतें चढ़ती जाएं और चाहे कितना ही स्विच ऑन करके रख दो, वो प्रकाश बाहर आएगा नहीं आएगा ना। हालांकि अंदर अभी भी प्रकाश है, हालांकि अंदर में प्रकाश अभी भी है, लेकिन वो पारदर्शी कांच अब पारदर्शी नहीं रह गया है, उसके ऊपर परतें चढ़ गई हैं और इसीलिए हम उस प्रकाश का भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और प्रकाश नहीं है तो अंधेरा है और अंधेरे में ठोकरे खाते हैं। ये फिलामेंट क्या है? ये आत्मा ज्योति बिंदु, ये पारदर्शक कांच क्या है? इसके चारों ओर की कवरिंग जिसको हम कहते हैं चित्त, जिसको हम कहते हैं चित्त। आरंभ में ये चित्त पारदर्शी, लेकिन काल चक्र में आए, समय चक्र में आए, समय के साथ साथ इसके ऊपर धूल चढ़ी बॉडी कॉन्शियसनेस की। धूल चढ़ती गई चढ़ती गई और वो प्रकाश अभी भी अंदर जल रहा है, वो ज्योति स्वरूप आत्मा अभी भी है, वो प्रेम स्वरूप अभी भी है, वो आनंद स्वरूप अभी भी है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर बहुत कमीजे हैं। अभी कमीज बहुत आ गई ना, तब कहा कि राज गाड़ीवान से कहा उसने, राजा ने, बताओ ये कौन सा रहस्य है? जिसके पास सहस्त्रों कमीजे हैं वो सुखी नहीं, और जिसके पास एक भी नहीं है वो सुखी है। क्लियर हुई बात? तो ये कमीजे उतारनी होगी, मतलब अभिमान तोड़ना होगा, अहंकार तोड़ना, मैंपन छोड़ना होगा, बुद्धि का अभिमान छोड़ना होगा, मन में उठने वाली दुर्भावनाएं छोड़नी पड़ेगी। यही तो चढ़ी हुई है कमीजे, और अगर ये छोड़ दिया, क्योंकि हम क्या कहते हैं, मैं ऐसे गुस्सा नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया ना तब किया, हम कहते उससे नफरत नहीं, मैं ऐसे नफरत नहीं करी, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे साथ ऐसा धोखा किया तब नहीं। स्वीकार, जो भी हुआ स्वीकार। तो ये परतें चढ़ेगी ही नहीं, तो पारदर्शी रहेगा चित्त, और अंदर से आनंद स्वरूप आत्मा के वाइब्रेशन मैं भी फील करूंगी, बाहर आएंगे और सारी दुनिया तक पहुंचेंगे, और इस तरीके से हम स्वयं भी सचित आनंद और सचित आनंद स्वरूप को इस संसार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाएंगे। और बहुत जल्दी ही जब वो प्रत्यक्ष हो जाएगा तो नया संसार आ जाएगा, उसी का इंतजार है ना। स्व परिवर्तन किस लिए? एक नया संसार लाने के लिए। तो उसके साथ फ्रिक्वेंसी मिलाना है, तो हमें भी सचित आनंद की स्थिति में रहना है, तो उसके साथ ट्यूशन लगाओ और उसको प्यार करो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे खातों से भी प्यार। ओम शांति।
खुशियाँ।